ओम शांति। आज आपके सम्मुख महान विभूति उपस्थित हुए हैं। आपके नाम आप सभी जानते हैं, हमारी आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी, जो मुझे लगता है आप सभी परिचित हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स हर समय टीवी चैनल्स पर आते रहते हैं, जैसे सोनी जी, जागरण, आस्था, संस्कार आदि आदि। तो आज आपके परिचय देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज आप यहाँ पर ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में बचपन से ही आए हुए हैं, और 1980s में आपने संपूर्ण समर्पित हो गए हैं, और आज यहाँ भिन्न भिन्न जगह पर पूरी वर्ल्ड में, देश विदेश में अनेक अनेक प्रोग्राम्स कराते हुए आप सबको लाभान्वित करते रहते हैं। और आपके द्वारा आज हम बहुत सुंदर परमात्मा का परिचय लेने जा रहे हैं। अभी आपने गीत में सुना है कि परमात्मा रहते कहाँ है, खुदा कौन है, तो आज आपको उषा दीदी परमात्मा से संपूर्ण रूप से उनका परिचय देख करके और उनके साथ मिलने के लिए आपको सन्मुख बिठाया है। उषा दीदी बहुत सुंदर तरीके से आपको परमात्मा का संपूर्ण परिचय देंगे। ओम शांति। हमारी बहन उषा दीदी को फूलों से स्वागत कर रहे हैं। आप सुनेंगे उषा दीदी से।
ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने ये गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। आज तेरे नाम पर मनुष्य लड़ते हैं, तू समझदार होके भी अनजान क्यों है। कितने सारे सवाल थे, और मैं समझती हूँ कि आज हर मनुष्य के मन में ये सारे प्रश्न है ईश्वर के प्रति। हर कोई वो सत्य स्वरूप क्या है उसको जानना चाहता है, समझना चाहता है। ये अंदर में ये भाव है कि जिसको हमने स्वीकार किया या जिसमें हमने अपनी आस्था रखी, क्या वही सत्य है या और कुछ है। जहां तक आत्मा का विषय आता है, वहां तक तो फिर भी दुनिया में एक ही मान्यता है कि शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति है जिसको आत्मा कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने सोल कहा, शक्ति कहा, है उस आत्मा की ओर इशारा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है, वहां आज दुनिया में इतने सारे मत मतांतर है कि मनुष्य सचमुच में अंदर में कंफ्यूज्ड है कि आखिर भी सत्य क्या है ईश्वर के विषय को लेकर के। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी, वहां एक बहन ने मुझे बताया कि उसका बेटा 17 साल का है, और वो अपनी मां से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है। क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है? वो माँ अपने बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में सारे भगवान हैं। वो बच्चा मना करता है कि सारे भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक होना चाहिए। और अगर ये सारे भगवान है तो इन सब का हेड कौन है? परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सब भगवानों का हेड कौन है? वो माँ अपने बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती, और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से मंदिर जाने लिए कहती, वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट माई माइंड। और इसीलिए वो मंदिर जाना नहीं चाहता है, कहता मंदिर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम बिकॉज आई कैन नॉट फोकस। ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज जो भारत में रह रहे हैं, जिनके पास अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान है, अगर मैं आप सबसे यही सवाल करूं कि मान लो कि कल को आपका बेटा या आपका पोता आपसे यही सवाल करे कि इतने सारे भगवान क्यों हैं, तो क्या उसका जवाब आपके पास है? और उसने भी अगर मंदिर जाने से मना कर दिया यही कहते हुए कि आई फील आई एम वेस्टिंग माई टाइम बिकॉज आई कैन नॉट फोकस, तो क्या आपको दुख होगा? इसलिए भी कम से कम आज की जेनरेशन को गाइड करने के लिए भी हमें जानने की आवश्यकता है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, क्या करता है। ये सारे सवालों का जवाब हमारे पास भी होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कहा इसीलिए मान लेना है, नहीं, हम आपको ओपिनियन नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ईश्वर को लेकर के इतनी सारी ओपिनियंस है कि हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है इतनी ईश्वर के बारे में बातें लिखी हुई थी। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरे कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जिसने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, अगर भगवान है तो कैन यू प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा, व्हाट इज ट्रूथ? क्या ये सभी मते सही है? क्या इसमें से एक सही है या सही कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? सत्य क्या है? क्योंकि सारी मतों को अगर देखा जाए तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे। और ये सारा कंफ्यूजन भी क्यों हुआ, वो कहानी याद आती है, आप सबने सुनी होगी कि एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है, यह सत्य कुछ और है जिसको वो देख ही नहीं पा रहे थे। आपका विवेक क्या कहता है, सत्य क्या है? यहां तक तो कहानी आप सबको मालूम है, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक 6 सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर के बताना है कि हाथी कैसा है। ये 5 सूरदास 1 by 1 जाते हैं और उस 6 सूरदास को कहते हैं कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है, पहला जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो खंभे की तरह लंबा लंबा है। दूसरा व्यक्ति जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो दीवार की तरह सीधा सीधा है। तीसरा जाकर कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सांप जैसा है, और पांचवा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा है, पंखे जैसा है। अब ये 6 सूरदास जिसने महसूस भी नहीं किया है, ये 5 की बातों को सुन करके कितना कंफ्यूज्ड होगा। एक ही प्राणी और सब अपनी अपनी बात बता रहे, ऐसा कैसा ये प्राणी होगा? लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर विश्वास कर लेता है कि ये 5 ने तो फील किया है ना, ये कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हो, सचमुच ऐसा कोई प्राणी होगा जो खंभे की तरह लंबा भी हो जाता होगा, दीवार की तरह सीधा भी हो जाता होगा, रस्सी जैसा भी हो जाता होगा। विश्वास कर लेता है। अब ये 6 सूरदास को कहा जाता है कि एक 7 सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर के बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। ये 7 सूरदास जाता है, 6 सूरदास जाता है 7 सूरदास के पास और कहता है देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन 5 लोगों ने जो महसूस किया उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे की तरह लंबा लंबा हो जाता है, कभी तो वो दीवार की तरह सीधा सीधा ही हो जाता है, कभी तो वो गोल गोल रस्सी की तरह हो जाता है, कभी तो वो सांप की तरह हो जाता है और कभी तो ये पंखे की तरह हो जाता है। अब ये सातवां सूरदास छठे सूरदास की बात को सुन करके क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा? यही कहेगा बकवास। ऐसा कोई प्राणी होता है? हाँ, रंग बदल सकता है कोई, लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एंड हाउ कैन यू बिलीव दिस? हैव यू गॉट एनी प्रूफ? कैन यू प्रूव इट? तो वो छठा सूरदास कहता है, देख भाई, प्रूफ तो मेरे पास है नहीं, मुझे तो ये पांच लोगों ने जो बताया उन्होंने तो महसूस किया था, वो कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोलते होंगे, महसूस किया था ना, तुम्हें मानना है तो मानो नहीं तो छोड़ दो। कुछ हमारी भी हालत ऐसी हो गई है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से उसके कोई गुणों को महसूस किया, किसी ने सत्य को महसूस किया तो कहा ईश्वर सत्य है, किसी ने प्रेम को महसूस किया तो कहा प्रेम ही ईश्वर है, किसी ने प्रकृति को महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने कण कण में भाव रख दिया तो उसके लिए कण कण में हो गया। हर एक ने आकर अपनी अपनी बातें बताई, नयनहीन सभी है, ज्ञान के दिव्य चक्षु किसी के पास नहीं, और इसलिए उन्होंने जब मनुष्य को बताए तो मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनि गलत थोड़ी बोलते होंगे, सही बोलते होंगे, उन्होंने तो महसूस किया है ना, और इसलिए विश्वास कर लिया। वो मनुष्य जब आज की जेनरेशन को बताना चाहते हैं तो आज की जेनरेशन क्या कहता है? बकवास। कैन यू प्रूव इट कि ये सब परमात्मा है? हाउ कैन यू बिलीव दिस? ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और इसलिए इतना कंफ्यूजन हो गया कि आज मनुष्य ने खुद को भी भगवान कह दिया, मैं ही भगवान, तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं मानना तो छोड़ दो। इतना सारा कंफ्यूजन, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने खुद को भगवान कह दिया, किसी ने सोचा कि कोई प्रूफ मिल जाए, और कुछ लोग कहते हैं सारे के फोटो घर में रख दो, सबकी पूजा करो, है ना, जो भी सही होगा। और इसलिए आज मनुष्य ने अपने छोटे से घर के मंदिर के अंदर या घर में भी सारे देवी देवताओं के फोटो रख दिए, सबकी पूजा कर रहा है, जो भी सही होगा। कितना कंफ्यूजन है। और इसलिए ईश्वर की वास्तविकता क्या है उसको जानना जरूरी है। ये नहीं कि हम आपको मत देंगे, मैं आज आपको एक कसौटी देंगी जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। मनुष्य होकर के अगर इतना भी नहीं समझ पाए, सारी दुनिया को खोज लिया हमने, आसमान को छेद लिया, धरती को, समुन्दर को, और ईश्वर को ही नहीं जान पाए, तो इसीलिए परमात्मा को परखने की वो कसौटी क्या है? पांच बातें हैं जिसके आधार पर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को हम समझ सकते हैं। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, गॉड इज वन। So he should be universally accepted by all the religions of the world as God. दूसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो। मनुष्य आत्मा इस संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा इन सभी चक्र से ऊपर है, परे है। न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, सभी चक्र से ऊपर है। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के तीनों कालों का ज्ञान है, आदि मध्य और अंत, तीनों लोकों का ज्ञान है, जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, इतनी अनंत महिमा जिसकी हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। अब देखिए ये पांचों बातें किसके साथ लगती है। एक एक मत को अगर उठाते जाए और इस कसौटी पर कस कर देखो, सत्य है। पहली बात, जब हम कहते हैं नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने वो बहुत सुंदर गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया। सत्य ये है प्रकृति परमेश्वर की रचना है। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? सत्य क्या है? अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते रहे। अब सत्य क्या है? आत्मा ही परमात्मा है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य? क्या कहेंगे? संतान है कहना सत्य है, तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस अगेन। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं। इस संसार में मनुष्य अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से कोई भी पोस्ट पोजीशन या डिग्री को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है नहीं। इसीलिए मनुष्य ने जैसा कर्म किया वैसे टाइटल को जरूर प्राप्त किया। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे ये पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे ये महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे ये धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे ये देवात्मा है। तो देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्माएं ये शब्द ग्रामर में नहीं आता है। और ये सब भी आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। और देव आत्माएं भी भारत में कितने हो गए? 33 करोड़ देवी देवताएं हो गए, देव आत्माएं, देव परमात्मा कोई नहीं है। तीसरा, कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है, उसमें से टुकड़े टुकड़े होकर के सब अंश होकर के नीचे आए संसार में और अंत में जाकर के उसी में समा जाना है, परमात्मा बन जाना है, लीन हो जाएंगे। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है, तत्व है, तत्व तत्व में समा सकता है। लेकिन आत्मा या परमात्मा तत्व नहीं है, शक्ति है, चैतन्य शक्ति कहा गया। इसीलिए ये कंपैरिजन ही गलत है। मैटर मैटर में मिल सकता है, लेकिन शक्ति के लिए तो यही कहा गया है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो उसके टुकड़े कैसे होंगे? आत्मा के लिए हमेशा यही कहा जाता है, अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है। तो उसके टुकड़े कैसे होंगे? तो जो शाश्वत है, इटर्नल शाश्वत है, सदा है, उसके टुकड़े तो हो नहीं सकते। तो ये कहना कि आत्मा परमात्मा का अंश है और नीचे आए और फिर जाकर के उसमें मिल जाना है, समा जाना है, लीन हो जाना है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत शक्ति है, उसका न टुकड़ा हो सकता है न वो कभी मिल सकता है। तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? संतान जरूर है। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? हम वंश है, अंश नहीं है, टुकड़े नहीं है। कई लोग कहते जैसे बच्चा अपने पिता का अंश है, बच्चा अपना पिता का अंश हो सकता है क्योंकि फिर भी वो मैटर है, उसी तत्व से बना हुआ, इसलिए वो हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं हो सकती है। हम इटर्नल है, सदा है, और उसके बच्चे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? एक तरफ तो हमने कहा ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी ओर हम गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। दो दो बातें किया फिर से,
ब्रह्म क्या है? पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है, जिसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व। तो परमात्मा तत्व नहीं है, परमात्मा उस तत्व में निवास करने वाले तथ्य है। इसीलिए जो कहा पार ब्रह्म परमेश्वर, पार जो पांच तत्वों की दुनिया से पार निवास करने वाले परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर है। एक है मकान, एक है मकान मालिक। मकान मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला मकान मालिक है। तो ब्रह्म ईश्वर नहीं, लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर ये कहना सत्य है। क्लियर? आगे बढ़े। पांचवी बात जब हम कहते हैं, चौथी बात जब हम कहते हैं सर्वव्यापी है, कण कण में कहां नहीं है, क्या सचमुच परमात्मा कण कण में है? कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? क्या हमारा विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? इन एवरी पार्टिकल? तब मनुष्य क्या कहता है कि नहीं, हर एक प्राणी में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है? अगर हर प्राणी में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा है और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं थी जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? फिर उसका बैठने का कोई मतलब क्या मतलब है? आज देखो कि घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप अगर सामने बैठे हैं, बच्चे किसी बात को लेकर झगड़ा करने लग जाए और माता पिता सामने बैठे हो, तो देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। तो परमात्मा अगर हमारा माता पिता है, वो अगर हम सबके अंदर बैठा हो और मनुष्य इतना गलत काम कर रहा हो और वो उसको रोक ना सके, तो बैठने का मतलब ही क्या है फिर? तो आज कोई हमें कोई बात पूछता है या बताता है और हमें मालूम नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने। हमेशा अनजानेपन में भी यही निकला, ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है, नीचे वाला कौन है, जो सब में कण कण में व्यापक है वो कौन है? फिर कितने सवाल है। गीता के अंदर जब चौथे अध्याय में भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में अवतरित होता हूं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर तो गीता के ये महावाक्य ही गलत है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे हुआ? फिर कौन आएगा उसका नाश करने के लिए, और वो कौन है फिर? कितने सवाल है। आज प्रकृति के पास भी ये क्वालिटी है कि अपने गुणों को ट्रांसफर कर सकते हैं। अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। अगर प्रकृति अपना गुण ट्रांसफर कर सकती है तो परमात्मा जो गुणों में अनंत है और वो सब में अगर विराजमान हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें ना लगे, ऐसा हो सकता है? मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को संग का रंग लग जाता है, तो उसका रंग चढ़ा ही नहीं, कैसे है फिर तो हम? लेकिन तब फिर बात ये आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में लिखी गई है। क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र भी गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उसको हमने समझा ही नहीं, न किसी ने समझाया है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र कैसे लिखे? कुछ न कुछ अनुभूति के आधार पर लिखे, कुछ न कुछ महसूस किया उसके आधार पर लिखे। और ये ऋषि मुनि के पास ये सिद्धि होती थी कि दे वर एबल टू ट्रेवल थ्रू टाइम। और जब वो कलयुग के समय को देखते थे कि मनुष्य कितना घोर पाप कर्म कर रहा है, तो मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप कर रहा है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है। ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक भय रहे और वो पाप कर्म कम करे। इसलिए ये बात शास्त्र में कही गई थी। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब वो घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो माँ उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेंगे, देख बाहर गए ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं, लेकिन एक भय बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे, अंदर खेलता रहे। वो दरवाजे तक जाता भी है, कुत्ते को गाय को देखेगा अंदर आ जाएगा। लेकिन वही बच्चा जब 4-5 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। और हंसते हुए निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेंगे लो मैं लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह मनुष्य आत्माएं भी जब कली काल आरंभ हुआ, तब कोई अगर उनको प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो मना कर देता था। क्या कहता था? बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। अरे आज से 100 साल पहले भी लोग पाप करने से डरते थे, लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसीलिए कोई अगर उसको याद भी दिलाता है, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले से डर रख, तो क्या कहता है मनुष्य? वही डायलॉग बोलता है, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। है ना व्यापारियों की मन की बात, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। कहने का भावार्थ ये है, जिस बात को उसने सत्य मान लिया था आज वो स्वीकार नहीं करता है। और अगर कोई कहता है भगवान तुझे देख रहा है, तू इतना पाप कर रहा है, वो तो क्या कहता है? वो देखता क्यों है? छुड़ाए ना, वो तो सर्वशक्तिमान है, छुड़ाना चाहिए ना। यानी कली काल का प्रभाव होकर के ही रहा, इतना कली काल बढ़ गया है, इसीलिए कली काल की जो दुष्टता है वो हरेक मनुष्य के मन के ऊपर छाई हुई है। तो तो सर्व व्यापकता की बात एक भावना है। उस भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। और उस भावना को हम भी स्वीकार करते कि आज अगर कोई हमें कहे कि बहन जी आप बाहर अकेले जा रहे हैं, तो मैं कहूंगी नहीं, भगवान मेरे साथ है। इस भावना को लेकर चलो, बहुत ऊंची बात है। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि ये माइक में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के उसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। अंधश्रद्धा को नहीं मानना है, लेकिन भावना को लेकर चलना है। जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। सर्व व्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। क्लियर हुई? आगे बढ़े। पांचवी बात, जब कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसमें उसको चक्रवात तूफान दिखाना है, तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? चित्र को देखकर कहें बड़ी तेज हवा है। और शांत प्रकृति दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं कि जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो जो हवा का आकार नहीं है, उसको भी एक चित्रकार चित्र के अंदर ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज नहीं है। तो क्या परमात्मा स्वयं नाम रूप आकार बिना होगा? हो ही नहीं सकता है। उसका भी अपना नाम रूप आकार है। जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। अगर आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति पुंज। वो मान्यता को अगर देखे कसौटी पर कस करके, क्या सर्वधर्म मान्य है? भारत में हिंदू धर्म में जिसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा गया, ज्योतिर्लिंगम यानी जो ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए हिंदू धर्म वालों ने एक आकृति बना दी और कहा ज्योतिर्लिंगम, जिसको नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं, कल्याणकारी है। शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति, गुणवाचक नाम है। आज मनुष्य का नाम गुणवाचक नहीं है। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा हसमुख भाई, लेकिन हंसते ही नहीं है। किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद, और झोपड़ा भी नहीं होगा, त्रिलोक चंद है ना। आजकल तो लोगों ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर रख दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, शंकर भाई, लेकिन उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो डबल नाम चाहिए, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, है ना। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम मिलेंगे, तीन इंजन लग जाता है, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी रामा भी कृष्णा भी, है ना। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम है, जो आज भी महान तीर्थ स्थान हो गए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपति नाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। जो सर्व का नाथ और ईश्वर है, इसलिए सारे मंदिरों के नाम का एंडिंग या नाथ या ईश्वर में होगा। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सारे शिव के मंदिर। पहले के जमाने में कहा जाता है जितने भी राजाएं हो गए, हर राजा के महल में शिव का मंदिर होता था, शिव की पूजा होती थी। ये बाकी सभी देवी देवताएं कब से आए मालूम ही नहीं, लेकिन पहले के जमाने में चाहे सोमनाथ का मंदिर विक्रमादित्य जी ने बनाया, तो काशी विश्वनाथ काशी के महाराजा ने बनाया, सभी महाराजाओं ने तो शिव के मंदिर स्थापित किए थे। इसीलिए आज भारत में कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव का मंदिर न हो। बाकी देवी देवता का है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन महादेव का मंदिर जरूर होगा। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, नॉर्थ में जाओ श्री राम से कृष्ण की पूजा मिलेगी, साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में, और इसीलिए उनको कहा जाता है देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। राजाएं तो छोड़ो, महादेव की पूजा तो देवताओं ने भी की, रामेश्वरम में श्री राम ने भी उसकी पूजा की, रावण ने भी उसकी पूजा की, इसीलिए तो उसको भोलेनाथ कहा। जिसने भी याद किया उसको शक्ति दे दी, राम ने याद किया तो श्री राम को भी मिल गई, रावण ने याद किया तो उसको भी मिल गई। गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने भी जिसकी पूजा की, देवियों को तो कहा ही जाता है शिव की शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते, जहां दोनों का नाम भी अलग है, आइडेंटिटी ही अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य भी अलग है, एक है भोलेनाथ कल्याणकारी, दूसरे है तीसरा नेत्र खुलता तो महाविनाश होता है। नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? भारत में जब भी कोई मंत्र देता ओम नमः शिवाय का मंत्र देता, किसी ने ओम नमः शंकराय दिया? एक है तो कहना चाहिए। शिवरात्रि मनाई जाती है, कभी शंकर रात्रि कहा? क्यों नहीं कहते? एक है तो कहना चाहिए ना, महाशिवरात्रि, महाशंकर रात्रि तो नहीं कहा ना। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखा है, किसका ध्यान कर रहा है? उनसे श्रेष्ठ कौन था? और उसको ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? शंकर को पूरा गृहस्थी दिखाया, माँ पार्वती, दो बच्चे, गणेश जी, कार्तिकेय, पूरा गृहस्थ जीवन में जिया। तो वो परमात्मा शिव और शंकर के लिए हमेशा यही कहते हैं कि वो देव है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। कैलाश पर्वत पर जाकर उसने ध्यान किया, किसका ध्यान किया? कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। क्यों किया? क्योंकि उसको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था, आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसीलिए ये तो हुई भारत वालों की बात, भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, काबा का पवित्र पत्थर है जिसका नाम है संगे अस्वद। ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहा जाता है कि पहले मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हरेक के अपने अपने इष्ट थे जिसको वो अल्लाह मानते थे, परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ कि क्या ये हमारे अल्लाह नहीं है, उसने कहा अल्लाह एक है। उसको मक्का से मदीना भेज दिया गया, वहां जाकर के कहते रहो, यहां नहीं कहना। फिर भी इसका वो प्रचार चालू रहा, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए, काफी मात्रा में लोग हो गए, तब पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा खून खराबा हुआ, उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पत्थर गिरा था जिसको स्थापित कर दिया गया, और उसी समय वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। और तब यही मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, इसलिए हर साल उनकी हज यात्रा ही निकलती है। वहां जाने के बाद लोग क्या करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं और 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और किसी मस्जिद में नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब प्रकाश, तेज। ज्योति का मतलब प्रकाश, तेज। तो बात एक ही है कि अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, क्रिश्चियन धर्म में, यहूदियों में कहा जाता है कि मोसेस जब माउंटेन पर गए, जहां उन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मोसेस ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसलिए जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया, उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने यही कहा कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाओ, जहां सबसे बड़ा चर्च है, जहां पोप की गद्दी है, उस चर्च के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको देख करके क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत, कितनी सुंदर रीति से महिमा गाई है, जितना स्पष्ट और किसी ने नहीं किया कि वो निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी नहीं खा सकता है, अजोनि जो किसी योनियों में नहीं आता है। इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था जिसका ध्यान किया, और उन्हें ध्यान करने की क्या जरूरत थी? कहने का भावार्थ, आज भी दिवाली के दिन जब महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाया जाता है, उस समय जैनी लोग अपनी प्रार्थना में यही गाते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है, किसका ध्यान किया, तो कहा जाता है सिद्ध शिलापति। सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ है, निराकार है, उसका ध्यान किया। और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए चार बातें बताई जाती है, ध्यान, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तपस्या। ये चार बातों से श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए जिससे दिव्य चक्षु खुलते हैं, जिससे दर्शन होता है। चरित्र श्रेष्ठ होना यही तो सच्ची तपस्या है, क्योंकि आज के युग में चरित्र ही तो मनुष्य का भ्रष्ट हो गया है। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो भी ध्यान मुद्रा में है। किसका ध्यान कर रहे हैं वो भी? आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसका नाम है चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी का मतलब है शांति का दाता, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, इसीलिए उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं, माइंड रिलैक्स होता है। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उसके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्व धर्म मान्य कौन है? सर्व धर्म मान्य एक ही तो है, भले नाम अलग अलग दिए, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह का, ईश्वर का, प्रभु कहा, सिद्ध शिलापति का, चिंकुन सेकी कहा, मालिक कहा, जो देवों का देव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, लेकिन है तो वो एक ही। आज आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, लेकिन आपका स्वरूप तो एक ही होगा या हर बार बदली हो जाएगा? एक ही होगा ना। ऐसे गॉड कहा, अल्लाह का, ईश्वर का, प्रभु का, तो क्या हुआ? स्वरूप तो एक ही है जो सर्व धर्म मान्य है। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक है। वही सर्वोच्च शक्ति, दूसरी कसौटी, पहली कसौटी क्लियर हो गई, दूसरी कसौटी, वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है। सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सभी चक्र से जो परे है। श्रीमद् भगवद गीता के 4वें अध्याय में कहा, मैं अजन्मा हूं, काल मुझे नहीं खा सकता है, मैं कालों का काल, अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, न देह है, न देह के संबंध है, अकर्ता भोक्ता, न कर्म करता हूं, न फल भोगता हूं। जब कर्म करता ही नहीं, फल भोगता ही नहीं, तो न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, सभी चक्र से परे है। और परे होने के बाद भी सर्वज्ञ है, इसीलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है। 3 लकीर यानी जो आदि, मध्य, अंत का ज्ञाता है, और जिसके पास सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। वो 3 लकीर के बीच में एक आंख होती है, यानी मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाला है, त्रिनेत्री, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके। और उसकी पूजा में 3 पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है।
त्रिमूर्ति है और इसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा गया। सत्यम शिवम सुंदरम, इसीलिए ये तीन देवताओं की भी मान्यता हर धर्म में है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, इस्लाम धर्म में जिब्राइल मिकाइल इसराफिल कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में द थ्री होली एंजल्स कहते हैं, है ना? और ये तीनों देवताओं की भी उत्पत्ति है, जन्म नहीं है, इसीलिए शिव शंकर को मिला दिया। क्योंकि ब्रह्मा को दिखाया विष्णु की नाभि कमल से, विष्णु को दिखाया ब्रह्मा की नाभि कमल से, अब दोनों एक दूसरे की नाभि कमल से कैसे निकलेंगे और कौन पहले निकला? वो चित्र एक याद आता है कि गांधी जी की नाभि कमल से नेहरू जी निकले, नेहरू जी की नाभि कमल से शास्त्री जी निकले, और शास्त्री जी की नाभि कमल से इंदिरा जी निकले, चित्र बनाया था, यानी वन आफ्टर दी अदर। ठीक इसी तरह ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु जी और विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी, यानी वन आफ्टर दी अदर, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। और शंकर का कोई दिखाया ही नहीं है, इसीलिए शिव शंकर को एक कर दिया। इतना गड़बड़ हो गया है शास्त्रों में, है ना? जब मनुष्य के पास जवाब नहीं होते तो मिला दो सब कुछ, और फिर कह दिया संशय बुद्धि विनाश्यंति, संशय बुद्धि विनाश्यंति, संशय नहीं करने का, जो हमने गड़बड़ किया उसमें संशय कभी नहीं करने का। यू हैव नो राइट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, मानना है तो मानो नहीं तो छोड़ दो, है कि नहीं? यहां भारतवासियों को एक मन में प्रश्न जरूर आ सकता है कि यहां जो ब्रह्मा दिखाया और शास्त्र में जो ब्रह्मा का चित्र दिखाया गया है, दोनों अलग है। वास्तव में ब्रह्मा के जो मंदिर है, चाहे पुष्कर में हो, खेड़ ब्रह्मा में हो, ब्रह्मा का जो चित्र हमने देखा है अब तक, ये ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था है। बाकी देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती, क्लीन शेव्ड होते हैं हमेशा है? एक ब्रह्मा ही ऐसा देवता है जिसको दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था है। दूसरा, ब्रह्मा को चार मुखधारी दिखाया। आज की दुनिया में कोई दो मुख वाला बच्चा पैदा होता है तो उसको एबनॉर्मल चाइल्ड कहते हैं। ब्रह्मा को चार मुख दिखाने के बाद भी एबनॉर्मल नहीं कहा गया, यानी ये किसी बात का प्रतीक है। कमल आसन पर, कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है, ये भी किसी बात का प्रतीक है। ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र वेद पुराण उपनिषद दे दिए, अब ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, ये भी किसी बात का प्रतीक है। प्रतीक क्या है? तो कहा जाता, जब परमात्मा को नई सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न हुआ, सृजन करने का संकल्प उत्पन्न हुआ, उस समय दुनिया में कौन सा समय चल रहा था? तो दुनिया के अंदर उस समय मनुष्य सृष्टि चल रही थी, देवों की सृष्टि नहीं थी, असुरों की सृष्टि भी नहीं थी। जब जब धर्म की अति ग्लानि हुई और तब तब भगवान को इस संसार को परिवर्तन करने का संकल्प आया, तो उस वक्त मनुष्य सृष्टि थी, जब अधर्म चरम सीमा पर था। तो मनुष्य सृष्टि का प्रतीक दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था मनुष्य को ही होता है, तो वो समय का प्रतीक है। अच्छा, फिर परमात्मा ने संसार में आकर के क्या किया, अवतरित होकर के क्या किया? तो एक तो अति साधारण और अनुभवी तन को आधार बनाया, जिसके लिए गीता के सातवें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूँ जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, विरला
मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मुझे प्राप्त कर लेते हैं या मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। यानी भगवान कोई दिव्य स्वरूप को लेकर के अवतरित नहीं हुआ, क्योंकि जरूर है अगर दिव्य स्वरूप लेकर के आए आज श्री कृष्ण के रूप में श्री राम के रूप में अगर अवतरित हुए भगवान तो लोग उसको काम करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचा देंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे? दर्शन की भीड़ मचा देंगे, उसको काम नहीं करने देंगे। इसलिए उसने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूँ लेकिन एक अनुभवी तन को अपना बनाता हूँ। और फिर आकर सबसे पहले क्या करते तो उसके जीवन को प्यूरिफाई करते, प्यूरिफिकेशन। इसीलिए उस समय संसार कीचड़ जैसा था, कीचड़ में एक कमल को खिलाया, प्यूरिफिकेशन। और उसके बाद क्या किया तो सभी शास्त्र का निचोड़ सुनाया, सभी शास्त्र का निचोड़। इसलिए सारे शास्त्र उसके हाथ में दे दिए कि उसने एक एक शास्त्र बैठ के पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सभी शास्त्र का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया? सारे संसार की आत्माओं को, खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, सारे संसार। कैसे दिखाए तो चार दिशा में चार मुख, कि वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ संसार के चारों दिशा में फैला। और फैला कैसे? सहस्त्र भुजाओं द्वारा। आज कोई हमारा मददगार होता है तो क्या कहते हैं, ये मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, यही कहते हैं ना। तो परमात्मा के इस दिव्य कार्य को सारे संसार में प्रवाहित करने के लिए हजारों आत्माएं उसके मददगार बन गए, या जिसको कहते खुदाई खिदमतगार बन गए, मददगार। तो वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा एक ही है जो कार्य इस वक्त चल रहा है। और वो परमात्मा सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। ज्योमेट्री के अंदर बिंदु का डेफिनेशन क्या होता है? इन्फिनिट। बिंदु के बिना एक लकीर भी नहीं, बिंदु के बिना एक अक्षर भी नहीं, इन्फिनिट। विज्ञान में सबसे सूक्ष्म अणु होता है, और इसीलिए परमात्मा ने गीता में कहा मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म। जितना अणु सूक्ष्म होता है उतना वो शक्तिशाली होता है। तो परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो ये था पांचों कसौटी के ऊपर एक ही दिव्य स्वरूप। तो जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो आज परमात्मा का भी हमने संपूर्ण परिचय देखा। परिचय के अंदर पांच बातें होती है, नाम क्या है, आइडेंटिटी चाहिए, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये पांचों बातों को देखा। जिस चैतन्य शक्ति का नाम है सदाशिव, यहोवा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, सिद्ध शिलापति, चिंकुन सिकी या वाहे गुरु, वही दिव्य स्वरूप उनका आइडेंटिटी के अंदर निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश नूर लाइट अखंड ज्योति निराकार स्वरूप। क्वालिफिकेशन पांचों बातें, सर्व धर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। और उसका निवास स्थान पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जो परम धाम का निवासी है, मोक्ष धाम का निवासी है, निर्वाण धाम का निवासी है, जिसको रूहानी दुनिया, सचखंड, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड अलग अलग नाम से लोगों ने जाना, उस धाम के निवासी है। और कर्तव्य क्या है? यदा यदा ही धर्मस, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कराना। खुद नहीं करते, खुद अकर्ता भोगता है। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य, शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य और विष्णु द्वारा पालना का कार्य। कराने वाला कौन? परमात्मा, करण करावनहार है, खुद करता नहीं है, कराता है ये तीन मूर्तियों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब तो अगर आपका बच्चा या आपका पोता पूछे कि सभी देवी देवताओं का हेड कौन है, तो अब तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? अब थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा को याद करेंगे। अब तक शिकायत थी कि मन लगता नहीं है, क्योंकि कहाँ लगाना यही पता नहीं था, अब तो पता चल गया, तो अब तो शायद ये शिकायत नहीं होंगी कि ध्यान नहीं लगता है। अब उस दिव्य स्वरूप को हम याद करेंगे, और याद करने के लिए ईश्वर को, उस ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं कि हे प्रभु शक्ति दो, शांति दो, मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर धूप में खड़े हो जाओ, सूर्य से कभी मांगते नहीं कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, समुद्र के पास खड़े होकर समुद्र से मांगते नहीं कि तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी, वो ऊर्जा रोम रोम के अंदर समा जाती है, शीतलता गर्मी समाने लगती है। ठीक इसी तरह हमें भी ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं, अपने ध्यान को एकाग्र करें उस दिव्य स्वरूप पर, और वो परमात्मा की ऊर्जा को भी रोम रोम के अंदर प्रवाहित होने दे, एनर्जाइज करे, बैटरी चार्ज करे। चले हा? स्वस्थ होकर के बैठेंगे सभी, पीठ सीधी हो एकदम, कोई बड़ी हस्ती से जब मिलना होता है ना, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर, तो वैसा ही अपना स्वरूप होता है, अकड़ होती है अंदर से। ठीक इसी तरह किससे मिल रहे हैं? परमात्मा से, सर्वशक्तिमान से। तो राजा जैसी बैठक हो, राजयोगी बनकर के बैठे, राजयोगी माना सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार। कुछ क्षण के लिए स्वयं को, बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, आत्मनिश्चय करते हैं, अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी के मध्य में चैतन्य शक्ति के रूप में, ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है, संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभा, वास्तव में मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र से अलग हूं, न्यारी हूं, धीरे धीरे अपने मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर, अपनी वास्तविकता की ओर, और महसूस करें अपने असली स्वरूप को। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है, दिव्य स्वरूप है, चारों ओर
दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल है, यही मेरा असली स्वरूप है। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरा गुणधर्म है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप, धीरे धीरे अपने ध्यान को ईश्वर में स्थित करती हूं। अंतर चक्षु से देखो जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी दिव्य प्रकाश पुंज है। अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय स्वरूप। सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान परमात्मा के किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। धीरे धीरे परमात्मा शक्ति से मेरे मन का मैल धुल रहा है। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूं। और सारा दिन हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में प्रवाहित करना है। ओम